ओम शांति। पिछले तीन दिनों से बहुत अच्छी योग भट्टी आप सब कर रहे हैं। यज्ञ के बड़े बड़े तपस्वी गाइडलाइन भी दे रहे हैं। जितनी निष्ठा के साथ ये स्व परिवर्तन तपस्या भट्टी आप कर रहे हैं, उतना ही सफलता अपने आप में अनुभव भी कर रहे होंगे। जब से बाबा के बने हैं रोज की पढ़ाई स्व परिवर्तन के लिए ही बाबा कराते हैं। पुरुषार्थ भी करते रहते हैं और साथ साथ सेवा भी हमारी चलती है। ये सेवा भी स्व परिवर्तन में सहयोगी है। व्यक्तिगत रीति से हम अपने आप को कितना याद करा सकते हैं, ये बहुत अच्छा ड्रामा में सेवा का कारोबार है। जो सेवा के निमित्त हम स्वयं ही स्वयं को वो पाठ सुनाते हैं, पक्का कराते रहते हैं। आवश्यकता है सिर्फ एक प्योर इंटेंशन की, एक शुद्ध इरादा कि मुझे बाबा का बनकर स्वयं क्या बनना है। हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट हो कि मुझे किस ऊंचाई तक पहुंचना है, तो उसके अनुरूप पुरुषार्थ स्वतः चलता है। जैसे बाबा कहते हैं, भक्त थोड़े में राजी होने वाले, हमारे में भी ये क्वालिटी हो सकती है कि थोड़े में राजी होने वाले, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके या ऊपरी ऊपरी परिवर्तन करके बाह्य परिवर्तन करके या टेम्पररी परिवर्तन करके खुश हो जाना, समय परिस्थिति माहौल देखकर टेम्पररी बदल जाना और समस्या को मिटा देना, एक स्वरूप हमारा ये भी हो सकता है। उसको कहते हैं कि सुपरफिशियल चेंज, ट्रांजिशनल चेंज, बाह्य ऊपरी टेम्पररी परिवर्तन। लेकिन हम सब जानते हैं कि संगम युग आमूल परिवर्तन का युग है। आमूल माना जड़ों से परिवर्तन का समय। संपूर्ण परिवर्तन का समय है, टोटल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, अंदर से जिगरी बदल जाना। और हमारे परिवर्तन की ऊंचाई ब्रह्मा बाप समान बनना। ऊंचे से ऊंच बाबा की, ऊंचे से ऊंच लक्ष्य वाली और मूल सत्य ज्ञान पर आधारित ये सारी हमारी पुरुषार्थ की जीवन है। हम कोई सामान्य व्यक्ति से या कोई मनुष्य के ज्ञान पर आधारित जीवन पद्धति से हम नहीं जुड़े हैं। हम सबको ये स्पष्ट है कि स्वयं भगवान के पूर्ण सत्य ज्ञान से हम जुड़े हुए हैं। अवश्य ही सोच समझकर हम सबने जीवन की ये राह ली है और अब इतने वर्षों के बाद हमें लक्ष्य में भी जरूर स्थिरता आ गई होगी। कोई नया बिजनेस है, ऊपर नीचे होता है, कंफर्टेबल है नहीं है ये होता है, भूले नुकसान असफलता ये होता है। पर आप सभी वो विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने 10 वर्ष से अधिक समय इस मार्ग में बिताए हैं। उस हिसाब से मैं कह रही हूं कि जरूर लक्ष्य में स्थिरता आ गई होगी। शुरू में हो सकता है कई बार हमें ये जीवन, ये पुरुषार्थ, ये पढ़ाई ना भी पसंद आया हो, कई बार मन से छोड़ने का भी सोचा हो, मुंझते भी हो, ये अस्थिरता है। पर 10 वर्ष का लंबा समय काल जिसने लगाया हो वो अवश्य ही मन से लक्ष्य, पुरुषार्थ और सेवा तीनों में स्थिर मना बने होंगे। गहराई से सोचा भी होगा, शुरुआत हो सकता है माँ बाप के कहने से हुई हो, कोई ऊपर के आकर्षणों से हुई हो, किसी के जीवन अच्छे लगे हो, सेवा अच्छी लगी हो, लेकिन 10 वर्ष बिताने के बाद और इस क्षेत्र की जो हमने चुना है, बाबा के ज्ञान योग के क्षेत्र की, इस क्षेत्र से जुड़े साथियों की, अंदर की बाहर की सूक्ष्म बड़ी हर ऊपर नीचाई जानने के बाद, क्योंकि 10 वर्ष का लंबा काल हम इसमें रहे हैं, तो ये सब कुछ जानने के बाद भी जरूर हम बाबा के बताए हुए लक्ष्य, पुरुषार्थ और सेवा में निश्चयात्मक बुद्धि से जीवन भर के लिए इसे स्वीकार करने के लिए अपने में तैयार हुए होंगे। नए नए जीवन में शुरू में जब हम ऊपर नीचाई अंदर बाहर की देखते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, हिल जाते, पर इतने लंबे समय के बाद हमने जरूर समझ पूर्वक इस जीवन को स्वीकार कर लिया है। तो अब जब हम लक्ष्य में स्थिर मना है, इस जीवन पद्धति को स्वीकार करने में भी निश्चयात्मक है, तो अब हमें स्वयं ही अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि संपूर्ण परिवर्तन स्वयं में मुझे लाना है या इतना ही ठीक है, इतने से ही बहुत ठीक है, या मुझे अंत तक बाबा जैसी ऊंचाई पाने के लिए जिगरी पुरुषार्थ करते ही रहना। बाबा ने तो हमें नव विश्व निर्माण के लिए निमित्त बनाया, जिसको विश्व परिवर्तन, संसार परिवर्तन आज के टॉपिक में कहा है। हमारे 3 संसार, एक पूरा विश्व जिस विश्व की हम इकाई हैं, जिस विश्व में करोड़ों आत्माओं में हमारा हीरो पार्ट है, ये बेहद विश्व सारी मानव जात और पशु पंछी प्रकृति जगत दोनों, दूसरा प्रैक्टिकली जिससे हम रिलेटेड और कनेक्टेड हैं वो ब्राह्मण संसार, संगम युगी ब्राह्मण संसार, और तीसरा है हर आत्मा का अपना आंतरिक संसार, हमारा आंतरिक संसार जिसके रंग, आज भी बाबा ने कहा ना कि बाबा रोज बच्चों की नई नई रंगत देखते हैं, वो हमारा आंतरिक इच्छाओं, वृत्तियों, भावों, आदतों, इन सब का संसार। और हम सब जानते हैं ज्ञानी तो आत्माएं कि जो अंदर है वो ही बाहर प्रतिबिंबित होता है, बाह्य संसार हमारी आंतरिक स्थिति का ही प्रतिबिंब है। भक्ति में कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसलिए संस्कार परिवर्तन वो स्व से रिलेटेड है, अवस्था से रिलेटेड है। संसार परिवर्तन वो सर्व से रिलेटेड है, व्यवस्था से रिलेटेड। हम हरेक के सामने दो चीज है, अवस्था और व्यवस्था। हम निमित्त हैं, जिम्मेवार हैं, बाप दादा के घर में बैठे हैं, उसकी गद्दी पर विराजमान। क्लास में आने वाले भाई बहने अवस्था से ही रिलेटेड, लेकिन हम सभी समर्पित आत्माएं अवस्था और व्यवस्था दोनों एस्पेक्ट से रिलेटेड। जब अवस्था और व्यवस्था की बात करते हैं तो बाप दादा साकार में ब्रह्मा बाप और हमारी दादियां दोनों रीति से एडमिनिस्ट्रेशन और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दोनों रीति से ऊंची पोजीशन में रहे। एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था, स्पिरिचुअल अवस्था, क्योंकि उन्होंने इतना विस्तार भी करके दिखाया, इतने सेवा साथी भी तैयार करके बताए और पूरी यज्ञ व्यवस्था भी संभाल कर बताए, दोनों में हाईएस्ट रहे। जितना एडमिनिस्ट्रेटिव हेड स्पिरिचुअली भी वो हेड रहे, ये बहुत गहराई से सोचने की बात है, क्योंकि हम सबका हाल क्या है। जो व्यवस्था संभालने में है वो कहते हैं अवस्था बनाने की फुर्सत नहीं है, हम व्यवस्था संभालने में बिजी हैं, दूसरे योग करें, दूसरे भट्टी करें, हमें अवस्था बनाने की फुर्सत नहीं। और कई ऐसे हैं जो अवस्था बनाने के पुरुषार्थ में हैं, पर वे कुछ भी व्यवस्था नहीं संभाल रहे। जिम्मेवारियां और सेवा संबंधित कारोबार से वो इतने रिलेटेड रहे। मैं समझती हूं हमें कई बार हम देखते हैं स्वयं में भी अनुभव करते हैं कि ये दो चीज अलग हो गई है। जो द्वापर में हुआ था कि कर्म और योग अलग हो गए, इसलिए कर्म साधारण होने लगे। हमारे जीवन में भी थोड़ा बहुत हम ये महसूस करते हैं। इसलिए जब दो चीज अलग हो जाती हैं तो विघ्न आते हैं। इतनी व्यवस्था संभालते हुए भी दादियों की आत्मभिमानी स्थिति, मर्यादा पूर्ण जीवन पद्धति, एक भगवान से जिगरी समर्पण, आपस में दिव्य गुणों से युक्त व्यवहार, इसमें भी वो पक्के रहे, नंबर वन आदर्श रहे। हम सेवा का विस्तार करने गए, कहीं संबंध भी बिगाड़ कर बैठ गए, कहीं अवस्था भी गंवा कर बैठ गए। ये एक इम्बैलेंस हमारे जीवन में, मैं समझती हूं हम सब महसूस करते हैं। इसलिए बाबा जो चाहते हैं हम सबसे निर्विघ्न यज्ञ, संसार परिवर्तन की जो बात टॉपिक में कही है, तो मैं अपने ब्राह्मण संसार की बात ही कर रही। भौतिक जगत तो फॉलो हो जाना है हमें, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, क्योंकि वो तो हमें फॉलो होंगे। इसलिए बाबा ने हमें यज्ञ सेंटर को निर्विघ्न बनाने की जो बात कही, ये है संसार परिवर्तन की बात। और वैसे भी हम सभी स्थापना कार्य के लिए निमित्त है, सतयुगी दुनिया लाने के लिए निमित्त है। और एक ऐसी दुनिया, सतयुगी दुनिया हमें बनानी है जो संपूर्ण निर्विकारी है, माया जीत है, नेचुरल आत्मभिमानी है, जहां सुख ही सुख है। ऐसी दुनिया की स्थापना के लिए हम निमित्त हैं। ऐसे संसार की स्थापना करने वालों की स्वयं की अनुभूति इस जन्म की क्या होनी चाहिए। अभी जो साकार मुरली में आया था कि संगम युग के जीवन मुक्त ही जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। संगम की अंतिम स्थिति सतयुग की पहली स्थिति है। संगम के अंत तक जिस ऊंचाई पर हम पहुंचेंगे उसी स्थिति से हम सतयुग की शुरुआत करेंगे। इसलिए फोकस अब स्वयं पर हमें करना है। सेवा करनी थी, बाबा ने हम सबसे करा ली है। समय अनुसार जो जरूरी था हम विस्तार में गए, बाबा का कार्य किया, वो सब हमारा जमा है, हमने सफल किया है, हड्डियां लगाई है, दिल से हम सबने मेहनत की। पर अब जो बाबा चाहते हैं कि अब बैक टू सेल्फ, अपने प्रति वापस आ जाओ। हम संसार में गए फैले सेवा के लिए, वो लक्ष्य पूरा ऑलमोस्ट हुआ, अब वापस खुद के प्रति बाबा हमें ला रहे। इसलिए इस सीजन में 2012-2013 की जो बाबा की सीजन चली, बाबा ने सेवा के नए कोई विचार हमें नहीं दिए। हमारे बड़े भाइयों ने बाबा से दो बार पूछा तो भी बाबा ने इसके बारे में कोई गाइडेंस नहीं दी। और टोटल जो मुरलियां चली, आपने नोट किया होगा कि समय की भी बाबा ने इस बार 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 सावधानी नहीं दी, क्योंकि आगे के कई सीजन में हर मुरली में बाबा दे चुके थे। इस बार टोटल बाबा ने सिर्फ रिजल्ट की बात की कि अब बाबा ये देखना चाहते, पुरुषार्थ की बात पूरी, सावधानी की बात पूरी, सेवा की बात पूरी, अब स्थिति चाहिए, रिजल्ट चाहिए। इसलिए संतुष्टता की बात कही। हरेक संतुष्ट मणि हो, बेफिकर बादशाह की बात कही, स्वयं के श्रेष्ठ कर्मों में और भगवान में इतना विश्वास कि कैसी भी हलचल में बेफिकर बादशाह की स्थिति रहे। तीसरा, बाबा ने खुश रहने की बात कही। लगभग 6-7 मुरलियों में सब में खुशी की बात बाबा ने कही। खुशी हमारी आउटपुट है, संगम युगी जीवन जिनका सार्थक रहा होगा उसको अवश्य खुशी होगी। सार्थक जिस अर्थ से ये जीवन अपनाया, उसी मीनिंग से जीवन सफल रहा तो रिजल्ट खुशी जरूर आएगी। इसलिए बाबा ने ये बात कही, खुश रहना, खुशी बांटना। इस जीवन से कोई गिला नहीं, सिकवा नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, प्राप्ति की अनुभूति से हर्षित मन जीत स्थिति की बात बाबा ने कही। ये रिजल्ट बाबा को चाहिए, क्योंकि अब संगम भी समाप्ति की ओर है। इसलिए कुछ भी स्व परिवर्तन में बचा खुचा रहा सहा कुछ भी है तो ये मौका है कि शक्तिशाली तपस्या के द्वारा वो हम कर ले। मोटा मोटा परिवर्तन तो आ चुका ज्ञान में आते ही, परंतु बहुत लंबे पीरियड के बाद भी जो आंतरिक बचे खुचे संस्कार है, वृत्तियां हैं, हर एक खुद अपने आप को जानते हैं। अभी भी किस बात की वृत्तियां हैं, कोई अंदर की भूख है, इच्छा है, बाबा को पाने के बाद भी मन अभी भी कुछ ढूंढ रहा है, कुछ चाह रहा है, क्यों? वो चीजें खत्म करनी, क्योंकि जहां तक स्वयं अनुभूति करना और दूसरों को कराने की बात है, अंदर में कोई असंतुष्टता, कोई इच्छा बाकी नहीं रह रही है। इसलिए ज्वालामुखी योग की जो बात कही, वो कोई नया योग नहीं, कोई और कुछ इसमें करना नहीं। ज्वालामुखी योग की स्पष्टता बाबा ने भी की थी, दादी गुलजार जी ने भी कई क्लासों में की, लाइट और माइट वाला योग, माना पूरी एकाग्रता और शक्ति वाला योग। इसलिए अब रहे सहे कोई भी पुराने संस्कार के अंश वंश को हम तभी बदल सकते हैं जब हम स्वयं बदलना चाहते हों। हम स्वयं बदलना चाहते हैं। अगर हमारी समझ और मान्यता यही है कि इतना तो रहता ही है, ये तो चलता है, हो ही जाएगा, अगर ये समझ है और ये मान्यता कि थोड़ा तो चलता है, हर कोई पुरुषार्थी है, तो हम नहीं कर सके। इसलिए अपनी डायरी खोलिए और सबसे पहले स्व परिवर्तन के बारे में आपका लक्ष्य क्या है वो एक लाइन में लिखिए। कि मैं टोटल बदलना चाहती हूं, अंदर में कोई विकार न रहे, अब जो स्वप्न और संकल्प में आती रहती हैं, क्योंकि मैं ये मान लेती हूँ कि कर्म और वाणी में नहीं आता होगा। लक्ष्य क्या है स्व परिवर्तन के संदर्भ में? आध्यात्मिक ऊंचाई स्वयं प्रति केंद्रित होने से ही आती है, इसलिए भक्ति में लोग अकेले अकेले पुरुषार्थ में चले गए। हमारा प्रवृत्ति मार्ग का योग है। बाबा ने हमें इस संगठन का सहयोग शुरू में दिया, पर अब इस संगठन में रहते हुए व्यक्तिगत पुरुषार्थ में मुझे रहना है। तो खुद के लिए ही लिखना है, एक दो का देखना भी नहीं, दिखाना भी नहीं। स्व परिवर्तन के लिए मेरा लक्ष्य क्या है? एक वाक्य में लिखिए, जब तक मेरी जिगरी इच्छा नहीं, नहीं हो सकता है। थोड़े बहुत परिवर्तन का बहुत सुंदर फल हमें मिल चुका है। हम थोड़े बहुत ही बदले और हमें इस जीवन में बहुत मान शान स्थान सुख हमें मिल गया है, पर हमें उससे भी ऊपर जाना है, उसमें अटकना नहीं। हमारा लक्ष्य, भगवान हमारे पीछे जो मेहनत करता है उसका लक्ष्य ये नहीं है, बहुत ऊंचा है। मुझे बार बार रोज आवे अंदर से, मुझे पूर्ण शुद्ध बन जाना है। जो मेरा आदि अनादि शुद्ध स्वरूप था वो ही मुझे वापस पाना है। अब दूसरी बात, ये हम खुद ही कर सकते हैं, इसमें कोई दीदी दादी नहीं, हम खुद खुद को जानते हैं अंदर से हम क्या है। बाहर से तो हम दिखा रहे हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं, योगी है, सफेद वस्त्रधारी है, बाल ब्रह्मचारिणी है, मां तपस्विनी है, पर मैं खुद खुद को जानती हूं कि मैं अभी भी कहां अटकी हूं, वो कौन सा संस्कार है, विकार है जो अभी भी अंदर इच्छाओं में, वृत्तियों में, स्मृति में, संकल्पों में, स्वप्नों में आता रहता है। खुद की बीमारी खुद को जानना है। इस वर्ष बाबा ने पहली बार बोला था, सब कॉन्शियस में भी फिकर तो नहीं? बाबा ने ये कहा, इस रीति से ये चेक कर, सूक्ष्म में कोई अभी भी विकारी वृत्ति, पुरानी वृत्ति, कलियुगी वृत्ति, जो भी कहो, मुरली में तो बाबा के बहुत शब्द आते हैं, पतितपना, शूद्रपना, बंदरपना है, तो वो कौन सा है? हर एक का अपना अपना हो सकता है, कोई क्रोध से रिलेटेड, कोई काम वासना से रिलेटेड, कोई लोभ, कोई मोह, कोई अहम, कोई झूठ, बनावट, वो क्रॉनिक डीप रूटेड बीमारी, विकार, आदत, संस्कार कौन सा है, वो अपनी डायरी में लिखो अपने हाथों से। मेरा चित्र मुझे स्पष्ट होना चाहिए, बाबा कहते ना, शरीर के नॉलेजफुल, ऐसे जितना बाबा के नॉलेजफुल इतनी माया के भी नॉलेजफुल। हम संपूर्ण नहीं बने हैं, इसका अर्थ कुछ है जिसके लिए मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, मेहनत कर रही हूं। अपनी नब्ज खुद पकड़ो, वो दिन चले गए, हमें दादियां कहती थी, डांटती थी, करेक्शन देती थी, अब ये बेहद का परिवार हो गया, हम खुद खुद के लिए जिम्मेवार, अब और ज्यादा हमारे में नॉलेज भी चाहिए, पावर भी चाहिए। जब कोई संभालने वाला है तो हम ज्यादा नहीं सोचते, पर समय अनुसार हरेक को स्वतंत्रता अच्छी लगती है तो जिम्मेवारी भी बढ़ती है, खुद की खुद के लिए जिम्मेवारी। और तीसरी बात, बीमारी पकड़ में आ गई, कौन सी बीमारी है? अब है और गहराई में जाके आपको ढूंढना होगा कि ये क्यों है मेरे में, अब तक इसका बीज क्या है? कोई भी चीज बिना कारण नहीं टिकती है, ये क्यों है मेरे लिए? हम उस कमजोरी को चाहते हैं इसलिए वो रहती है। जिसको हम चाहें नहीं, यूज करें नहीं, वो अपने आप नष्ट हो जाता। अब तक ये आदत और संस्कार क्यों बना रहा है मेरे में? इस कमजोरी को अभी भी रखने के पीछे मेरी क्या इच्छाएं हैं? मान लो मैं गुस्सा करती रहती हूँ, क्यों? जानते हुए समझते हुए भी क्यों? बीज कि मेरा ये मानना है कि गुस्से से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या मैं दूसरों को हीन समझती हूं और अपने को सुपीरियर समझ रही हूं? गुस्सा करने का अधिकार मैंने क्यों रखा है? जो अपने रूहानी व्यक्तित्व से कार्य नहीं कर सकता वो विकार का आधार लेता है। नेगेटिव आधार लेता है। जो नहीं करना चाहिए ईश्वरीय विवेक के अनुसार वो मैं क्यों करती रहती हूं? क्या मैं ज्ञान से सहमत नहीं हूं, श्रीमत से सहमत नहीं हूं? क्यों? मैं इस कमजोरी से क्या चाहती हूं पाना? गलत तरीका, गलत साधन से राइट प्राप्ति नहीं हो सकती। लगेगा पर हो नहीं सकती। मैं परम सत्य के घर में सत्य की दुनिया स्थापन करने के लिए उनकी साथी बनी हुई हूं और मैं यह असत्य क्यों अपने में रखी हुई हूं? मुझे कोई देहधारी का आकर्षण होता रहता है, क्यों? मैं क्या पाना चाहती? प्यार? देहधारी प्यार कर ही नहीं सकता है। बाबा ने कहा है देहधारी का प्यार प्यार नहीं मार है, आत्मा को बांधने वाला है। आत्मा को गिराने वाला है। मुझे साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। 63 जन्मों का अनुभव सामने लाओ। आत्माओं से लिया, रिजल्ट क्या हुआ? उतरती कला, चट खाते में गए, ताज गया, तिलक गया, तख्त गया। भगवान क्यों कहता छोड़ो देह संबंध को, अगर उसमें प्राप्ति होती तो? मुझे ईर्ष्या होती रहती है, कोई आगे बढ़ता है मैं जलती हूं, क्यों? मेरी अपनी क्षमता नहीं है, मेरी अपनी क्षमता नहीं है आगे बढ़ने की। अवश्य मैंने अपनी विशेषता को खोजा नहीं है, मैं उस पर फोकस नहीं हुई हूं। कुछ भी मतलब जो बाबा के सद्ज्ञान से ईश्वरीय विवेक मिला है, गहराई से सोचे, हमें बीज मिलेगा जिसके कारण ये कोई न कोई संस्कार विकार का वृक्ष अभी तक है, बीज को खत्म करना और उस बीज को खत्म करने के लिए जो कहा ना ज्वालामुखी योग माना, बहुत जिगरी लगन से स्वयं के पीछे अभ्यास पुरुषार्थ, कोई ना कोई गुण शक्ति की डेफिशिएंसी, कमी, विकार अवगुण को जन्म देती, वो गुण और शक्ति बाबा से हम भरे, वो रोज पुरुषार्थ। तो मैं सही बाबा की साथी, यज्ञ निर्विघ्न बनाने में यही दो चीज चाहिए, संस्कार परिवर्तन स्वयं के, क्योंकि हम दूसरे के मालिक नहीं बन सकते। हो सकता है मैं संस्कार परिवर्तन खुद का करूं, पर जरूरी नहीं दूसरा करेगा, वो नहीं भी करेगा, वो नहीं भी करेगा, पर मुझे करना है या नहीं करना है। एक है खुद के संस्कारों से खुद को विघ्न और उसके कारण यज्ञ में विघ्न, और एक है कि हम अनेक आत्माओं के साथ रहना, सेवा करना, उसमें उन आत्माओं के संस्कारों से विघ्न, वहां मुझे क्या करना है, वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं अभी नहीं लेती हूं, अभी हम खुद का लेते। आज हम दिल से ये कमजोरी बाबा को समर्पित करते। पिछले संडे मुरली चली है, अंतिम आहुति है, आज भी बाबा की चली, अहंकारी नहीं अलंकारी, रिजल्ट क्या चाहिए बाबा को, वो भी पिछली मुरली में बाबा ने बताया था कि अनादि आदि आत्मिक स्मृति स्वरूप हो और बाबा बाबा अनहद नाद, माना दिल से नेचुरल याद, बाबा बाबा, ये अवस्था बननी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो दुनिया के सुधार उद्धार में हम ही रह जावे। जैसे बाबा सब कुछ करते कराते भी स्वयं में और बाबा में ही लास्ट में केंद्रित हो गए। हमारा यही अंतिम समय, हमें दादियों और बाबा की तरह, हम बूढ़े हों फिर संपूर्ण बनने की हमारे लिए मार्जिन नहीं है। हमें तो इसी आयु अवस्था में समय के देखते हुए संपूर्ण बनने की तैयारी करनी। उनको तो वो भी सहयोग मिला। अंदर से मैं आत्मा ज्ञान वृद्ध बन जाऊं, इतनी परिपक्व मैं बन जाऊंगा ज्ञान युग में कि वो अवस्था का मैं अनुभव कर सकूं। तो वो बीज लिखो, वो बीज कौन सा है जिसके कारण अभी तक वो कलियुगी संस्कार रहा हुआ है। स्वपरिवर्तन का लक्ष्य लिखा आपने, उस हिसाब से कौन सा विकारी संस्कार अभी भी है जो मुझे अवस्था बनाने में और यज्ञ व्यवस्था संभालने में, माना पुरुषार्थ और सेवा दोनों में विघ्न रूप है। और तीसरा, इसका बीज क्या है? बीज क्या है? रूट कॉज जिसे कहते हैं, भाई सिर दर्द हो रहा है पर बीज कहीं और है, वो मूल बीज को खत्म करते।